ऊपर की बातों से स्पष्ट होता है कि वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक स्तरण का आधार संपत्ति के अलावा व्यक्तियों की अपनी योग्यता, गुण, उपलब्धि या सत्ता हुआ करती है। अन्य व्यवस्थाओं की तरह यह स्थिर व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अपनी उपलब्धियों के आधार पर नीचे से ऊपर जा सकता है। यदि जीवन की उपलब्धि कुछ अच्छी रही तो व्यक्ति निम्न वर्ग से मध्य वर्ग और मध्य वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकता है। ठीक इसके विपरीत, एक उच्च स्तर का व्यक्ति या अमीर व्यक्ति किसी खास कारण से सबसे निचले स्तर तक आ सकता है, तो उसका वर्ग बदल जाता है। इस अर्थ में वर्ग व्यवस्था स्तरण की एक लचीली व्यवस्था है। वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक हैसियत प्राप्त किया जाता है, आरोपित नहीं होता है। ऊपर की बातों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत स्तरण के बहुत सारे आधार होते हैं तथा समाज में इतना खुलापन होता है कि लोगों को नीचे से ऊपर बढ़ने की पूरी आज़ादी होती है। वर्ग व्यवस्था एक खुले समाज की विशेषता है। पाश्चात्य देशों में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में समाज में स्तरण का प्रमुख आधार आज वर्ग व्यवस्था ही है। वर्ग व्यवस्था के आधार पर हम समाज को मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं, उच्च वर्ग यानी अपर क्लास, मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास और निम्न वर्ग यानी लोअर क्लास। अधिक से अधिक हम इन तीन वर्गों को निम्न प्रकार से 9 उप भागों में भी विभक्त कर सकते हैं, पर जाति व्यवस्था की तरह वर्ग व्यवस्था पर आधारित समाज में अनगिनत स्तर कभी नहीं हो सकते हैं। वे 9 उपभाग निम्न रूप से हैं। पहला, अपर अपर क्लास। दूसरा, अपर मिडिल क्लास। तीसरा, अपर लोअर क्लास। चौथा, मिडिल अपर क्लास। पांचवा, मिडिल मिडिल क्लास। छठा, मिडिल लोअर क्लास। सातवा, लोअर अपर क्लास। आठवा, लोअर मिडिल क्लास। और नौवा, लोअर लोअर क्लास। पाश्चात्य देशों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के वर्गों को हम निम्नलिखित ढंग से रख सकते हैं। पहला, उच्च वर्ग यानी अपर क्लास, और अपर क्लास में ए, अभिजात वर्ग यानी एरिस्टोक्रेसी, और एरिस्टोक्रेसी में एक, पुराना उच्च वर्ग यानी ओल्ड अपर क्लास, और दूसरा, नवीन उच्च वर्ग यानी न्यू अपर क्लास। अपर क्लास में बी, बड़े भूस्वामी यानी लार्ज लैंड ओनर्स, और सी, वित्तीय उद्यमकर्ता यानी फाइनेंशियल एंटरप्रेनर। दूसरा, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में ए, पुराना मध्यम वर्ग यानी ओल्ड मिडिल क्लास, बी, उच्च मध्यम वर्ग यानी अपर मिडिल क्लास, और सी, निम्न मध्यम वर्ग यानी लोअर मिडिल क्लास। तीसरा, श्रमिक वर्ग यानी वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास में ए, उच्च श्रमिक वर्ग यानी अपर वर्किंग क्लास, और बी, निम्न श्रमिक वर्ग यानी लोअर वर्किंग क्लास। वर्ग व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्तरण का आधार विकसित और विकासशील देश में एक समान नहीं हो सकता है। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण फर्क यह है कि विकासशील देशों के अंतर्गत मध्यम श्रेणी के लोगों की संख्या बहुत कम है। वहाँ सबसे अधिक किसान और मजदूर पाए जाते हैं, जो निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि विकसित देशों के अंतर्गत वहाँ की आबादी का अधिकांश भाग मध्यम श्रेणी का माना जाता है। निम्न श्रेणी के अंतर्गत बहुत कम लोग आते हैं। विकासशील और विकसित देशों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के उद्देश्य से यहाँ दो चित्रों का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है। पाश्चात्य समाजों के संदर्भ में कुछ समाजशास्त्री अब यह कहने लगे हैं कि वर्ग विश्लेषण के आधार पर आधुनिक समाज को ठीक से नहीं समझा जा सकता है। यहाँ हम उन दोनों चित्रों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला चित्र है एक त्रिभुजाकार, जिसमें सबसे ऊपर है उच्च उच्च स्तर यानी अभिजात, दूसरा है निम्न उच्च स्तर यानी पुजारी या मुंशी इत्यादि, तीसरा है मध्यम वर्ग यानी शिल्पकार, कारीगर, दुकानदार इत्यादि, और सबसे नीचे किसान है। यह है परंपरागत समाज का पिरामिड नुमा स्तरण। अब दूसरा है आधुनिक समाज का स्तरण, और इसका चित्र है एक गोलाकार, और गोलाकार के ऊपर एक त्रिभुजाकार और नीचे स्क्वायर यानी वर्ग। सबसे ऊपर त्रिभुजाकार में सबसे ऊपर है उच्च उच्च वर्ग यानी पुराने अमीर लोग, और त्रिभुज में नीचे है निम्न उच्च वर्ग यानी नव अमीर लोग। त्रिभुज के नीचे गोलाकार है और गोलाकार में ऊपर है उच्च मध्यम वर्ग। उच्च मध्यम वर्ग में निम्न रूप से उच्च वेतनभोगी अधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रबंधक इत्यादि हैं, और गोलाकार में ही नीचे है निम्न मध्यम वर्ग, जिसमें आते हैं किरानी, स्कूल शिक्षक, प्रशिक्षित कर्मचारी इत्यादि। और गोलाकार के नीचे दो वर्गाकार है, जिसमें पहले वर्गाकार में उच्च निम्न वर्ग यानी अर्ध कुशल कर्मचारी और मजदूर, और सबसे नीचे है निम्न निम्न वर्ग यानी मजदूर और बेरोजगार इत्यादि। यह था आधुनिक समाज का स्तरण। आज समाज में इतनी अधिक गतिशीलता बढ़ गई है कि व्यक्ति के जीवन के अवसर अब इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं कि वह किस वर्ग का है। लोगों को वर्ग विभाजन में उतना विश्वास नहीं रह गया है। समाज में इतना अधिक खुलापन हो गया है कि स्तरण का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी से कम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जीवन में बढ़ने के अवसर इतने अधिक हो गए हैं कि वर्ग पर आधारित सामाजिक संरचना अर्थहीन लगने लगी है। दूसरी तरफ वैसे भी समाजशास्त्री हैं जो यह दलील स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि वर्ग व्यवस्था आज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। हैसियत के प्रकार तथा निर्धारक, टाइप्स एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ स्टेटस। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि स्तरण के बहुत सारे आधार होते हैं, और वे अलग अलग ढंग से व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करते हैं। जिन पांच प्रकार के स्तरण की पद्धतियों की चर्चा की गई है, उनके अंतर्गत व्यक्तियों की हैसियत और उनके कौन कौन से प्रमुख निर्धारक हैं, उसकी यहाँ चर्चा की जा रही है। लेकिन इसकी चर्चा के पहले यह जान लेना जरूरी है कि स्थिति यानी स्टेटस और स्तरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन में काफ़ी भेद है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुछ लेखकों ने स्थिति यानी स्टेटस एवं स्तरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन को इस ढंग से मिला दिया है कि स्थिति एवं स्तरण के निर्धारकों के बीच कोई फर्क ही नहीं रह गया है। यहाँ यह समझ लेना बहुत ही आवश्यक है कि दोनों अलग अलग किस्म की अवधारणाएं हैं। स्थिति से हमारा अभिप्राय हमेशा एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के सामाजिक पद यानी सोशल पोजीशन से है। दूसरी तरफ स्तरण से हमारा तात्पर्य समस्त समाज के स्तर पर विभिन्न प्रकार के स्थितियों का श्रेणीबद्ध विभाजन या व्यवस्था से है। स्तरण पूरे समाज को उसकी समग्रता में देखने का प्रयास करता है। स्थिति एवं स्तरण के निर्धारकों के बीच स्पष्ट फर्क है। वह यह है कि स्तरण के कारक समस्त समाज के विभाजन के कारक हैं, तो स्थिति के निर्धारक समाज में व्यक्तियों की स्थिति के विभाजन के कारक हैं। कभी कभी भ्रम इसलिए होता है कि जाति और वर्ग कभी कभी भ्रम इसलिए होता है कि जाति और वर्ग व्यवस्था के तत्व स्तरण और स्थिति दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कारक हैं जिनके द्वारा मात्र व्यक्तियों की हैसियत का निर्धारण होता है, स्तरण का नहीं, जैसे आयु, लिंग या व्यक्तिगत गुण सामाजिक स्थिति के निर्धारक हैं, स्तरण के नहीं। पीए सुरुकिन ने 1927 में अपने निम्नलिखित विचार से दोनों के बीच फर्क और अधिक स्पष्ट किया है। स्तरण समाज का एक विषम स्तरीय अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस पर विभेदीकरण है, तो हैसियत व्यक्तियों का विषम स्तरीय यानी वर्टिकल एवं सम स्तरीय यानी होरिजोंटल दोनों अक्षों पर विभेदीकरण है। हैसियत या स्थिति सामान्य सामाजिक व्यवहार में एक पद या सम्मान का सूचक है जो समाज द्वारा स्वीकृत एवं स्थापित व्यापक नियमों तथा प्रथाओं से संबंधित होती है। उदाहरण स्वरूप कुलपति की स्थिति, पुरोहित की स्थिति इत्यादि। समाज में एक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थिति होती है। जैसे एक व्यक्ति विश्वविद्यालय में कुलपति, परिवार में पति या पिता एवं क्लब में एक आम सदस्य इत्यादि कुछ भी हो सकता है। इन सभी के मिलने से व्यक्ति की एक सामान्य प्रतिष्ठा बनती है जो उस व्यक्ति विशेष के हैसियत या स्थिति कहलाती है। स्थिति सामान्यतः दो प्रकार की होती है, आरोपित स्थिति यानी एस्क्राइब्ड स्टेटस और दूसरा अर्जित स्थिति यानी अचीव्ड स्टेटस। पहला आरोपित स्थिति यानी एस्क्राइब्ड स्टेटस। आरोपित स्थिति ऐसी स्थिति को कहते हैं जो हमें जन्म से या जैविकीय आधार पर प्राप्त होती है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है, जैसे किसी जाति या प्रजाति विशेष की सदस्यता, स्त्री या पुरुष होना, बच्चा या बुजुर्ग होना इत्यादि। आरोपित स्थिति के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व या कारक व्यक्तियों की हैसियत का निर्धारण करते हैं। पहला, लिंग यानी सेक्स। इसके आधार पर हम स्त्री या पुरुष के बीच विभेद करते हैं। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुष की तुलना में प्रायः निम्न है। जितनी स्वतंत्रता या सुविधाएं पुरुषों को प्राप्त हैं उतनी स्त्रियों को उपलब्ध नहीं है, या जो प्रतिष्ठा परिवार के मुखिया को प्राप्त है वही परिवार के गृह स्वामिनी को नहीं है। यह असमानता परिवार के स्वरूप पर भी निर्भर करती है। यदि परिवार मातृसत्तात्मक है तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में थोड़ा अधिक अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा, आयु यानी एज। आयु के आधार पर भी समाज में व्यक्तियों के बीच विभेद देखा जाता है। परिवार में बुजुर्ग सदस्यों को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि अधिक प्राप्त होती है। विशेष रूप से पारंपरिक समाजों में यह भाव अधिक देखा जा सकता है। आयु का भी आधार जैविक है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि हम किसी व्यक्ति से कितने बड़े या कितने छोटे हैं। यहाँ यह जान लेना अति आवश्यक है कि लिंग भेद, आयु, वर्ण, जाति एवं प्रजाति की तरह आरोपित स्थिति का निर्धारण नहीं करता है। आज पाश्चात्य देशों में लिंग एवं आयु के आधार पर शायद ही किसी व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण होता है। यह मुख्य रूप से कुछ परंपरागत समाजों की ही विशेषता है। प्रथम दृष्टि में यह आधार जैविक भले ही लगे, किंतु यह जैविक तथा सामाजिक दोनों है, इसलिए कि उम्र एवं लिंग भेद के आधार पर लोगों का विभाजन सामाजिक मूल्यों से जुड़ा है। तीसरा, वर्ण। जाति की उत्पत्ति के पूर्व प्राचीन भारत में अस्तरण का मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था थी, जिसका स्वरूप बहुत कुछ तक वर्तमान वर्ग व्यवस्था से मिलता जुलता था। प्राचीन काल में व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का निर्धारण वर्ण के आधार पर होता था, और आमतौर पर वर्ण का निर्धारण जन्म से होता था। लेकिन इसमें संदेह की बात नहीं है कि जाति की तुलना में इसमें ज़्यादा लचीलापन था। व्यक्तियों के वर्ण में फेरबदल संभव था। ऐसा माना जाता है कि अस्तरण का यह सबसे प्राचीन तरीका है। यह अपने विकृत स्वरूप जाति व्यवस्था के रूप में आज भी मौजूद है। प्राचीन काल में लोग चार वर्णों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो लोग समाज में सबसे उच्च वर्ग जैसे ब्राह्मण के थे उन्हें समाज में सबसे ऊंचे स्तर पर रखा जाता था और उन्हें सबसे अधिक प्रतिष्ठित माना जाता था। जो लोग समाज में सबसे निम्न स्तर पर थे उन्हें समाज में बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा जाता था, जैसे शूद्र। वर्ण व्यवस्था क्या है और इसके आधार पर स्तरण कैसे होता था, इसकी फिर से चर्चा की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा, जाति यानी कास्ट। भारतीय समाज में जाति स्तरण का ही नहीं बल्कि व्यक्तियों की हैसियत का भी मुख्य आधार है। जाति के आधार पर हिंदू समाज में ऊंची या निची श्रेणी प्राप्त होती है। जाति की सदस्यता हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। चूंकि जाति की चर्चा पहले की जा चुकी है इसलिए जाति के बारे में यहाँ कोई विशेष चर्चा नहीं की जाएगी। पांचवा, प्रजाति यानी रेस। यह आधार भारतीय समाज की अपेक्षा पश्चिमी देशों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है। रंग भेद या त्वचा यानी स्किन के आधार पर समाज में विभेद किया जाता है, जैसे अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि देशों में गोरे लोग को निग्रो की अपेक्षा अधिक सुविधा और प्रतिष्ठा प्राप्त है। कानूनी तौर पर बराबर होते हुए भी वे समाज में काफी उपेक्षित हैं। दूसरा, अर्जित स्थिति। अर्जित स्थिति वैसी स्थिति है जिसे व्यक्ति अपने व्यवहारों या प्रयासों से जीवन में प्राप्त करता है। अर्जित स्थिति जन्मजात नहीं होती है, जैसे प्रोफेसर, इंजीनियर या बहुत बड़ा खिलाड़ी होना इत्यादि। यदि हम समुचित योग्यता के आधार में कोई छोटी नौकरी ही प्राप्त कर पाते हैं तो यह भी हमारी अर्जित स्थिति ही कही जाएगी। इसी तरह ऊंची योग्यता वाली नौकरी प्राप्त करना भी किसी के लिए अर्जित स्थिति ही मानी जाती है। अमेरिकन समाजशास्त्रियों ने वर्ग व्यवस्था को अर्जित स्थिति का निर्धारक के रूप में देखा है। वर्ग आमतौर पर व्यक्ति के आर्थिक गुणों से संबद्ध होता है। इनके अनुसार व्यक्ति अपनी कार्य क्षमताओं में वृद्धि लाकर अधिक से अधिक धन उपार्जन कर सकता है और वह निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में आसानी से जा सकता है। इन विचारकों ने अनेक ऐसे उदाहरण दिए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि कोई व्यक्ति मजदूर वर्ग में जन्म लेकर उच्च वर्ग में जा सकता है। परंतु कार्ल मार्क्स ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया है कि वर्ग एक अर्जित गुण है। कार्ल मार्क्स के अनुसार एक पूंजीपति का बेटा बिना किसी प्रयास के उच्च वर्ग का सदस्य हो जाता है एवं सर्वहारा के संतान सर्वहारा वर्ग में ही गिने जाते हैं। इस मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार वर्ग व्यवस्था बहुत कुछ जाति व्यवस्था की ही तरह व्यक्ति की आरोपित स्थिति का पोषक है। स्तरण के निर्धारक, डिटरमिनेंट्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। पार्सन्स ने स्तरण के छह निर्धारकों की चर्चा की है। इनमें मात्र स्तरण का ही निर्धारण नहीं होता बल्कि व्यक्तियों की हैसियत का भी निर्धारण होता है। पहला, नातेदारी समूह की सदस्यता। मेंबरशिप इन अ किनशिप यूनिट। दूसरा, व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण, पर्सनल क्वालिटीज। तीसरा, उपलब्धियां यानी अचीवमेंट्स। चौथा, स्वामित्व यानी पोजेशंस। पांचवा, सत्ता यानी ऑथोरिटी। और छठा, शक्ति यानी पावर। पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत इन छह कारकों के द्वारा ही समाज में व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण होता है। विभिन्न समाजों में विभिन्न कारकों का अलग अलग प्रभाव होता है। यहाँ यह विशेष रूप से उद्धृत किया जा रहा है कि निम्नलिखित विश्लेषण स्वयं पार्सन्स के द्वारा दिए गए विवेचन पर आधारित है। यहाँ ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इस विषय वस्तु पर हिंदी में जितनी भी पुस्तकें देखने को मिली हैं वे पार्सन्स के विचारों से बिल्कुल अलग हैं। पहला, नातेदारी समूह की सदस्यता, मेंबरशिप इन अ किनशिप यूनिट। व्यक्तियों की हैसियत समाज में कभी कभी इस तथ्य से भी निर्धारित होती है कि वह किस प्रकार के समूह से जुड़ा हुआ है। समूह की सदस्यता दो प्रकार से प्राप्त होती है, पहला जन्म से और दूसरा विवाह से। यदि कोई व्यक्ति राज परिवार में जन्म लेता है तो उस बालक की सामाजिक स्थिति साधारण परिवार में जन्म लेने वाले लोगों की तुलना में हमेशा ऊंची होगी। अगर कोई व्यक्ति साधारण परिवार या समाज के निम्न तबके में जन्म लेता है तो उसकी सामाजिक हैसियत स्वाभाविक रूप से छोटी होगी। लेकिन यदि वह अपने गुणों या उपलब्धियों के कारण किसी उच्च कुल के परिवार से वैवाहिक संबंध जोड़ने में सफल हो जाता है तो उस व्यक्ति को उस कुल की सदस्यता प्राप्त हो जाती है और फलस्वरूप उसकी सामाजिक हैसियत ऊंची हो जाती है। दूसरा, व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण, पर्सनल क्वालिटीज। समाज के अंतर्गत कभी कभी विभेदीकरण का आधार व्यक्तिगत गुण भी हुआ करता है। यहाँ व्यक्तिगत गुण से तात्पर्य वैसे गुणों से है जिसका संबंध संजन्म या जैविक प्रक्रिया से जुड़ा है, जैसे उम्र, लिंग भेद, सुंदरता, बुद्धि, शारीरिक शक्ति इत्यादि। समाज उम्र के आधार पर भी अपने सदस्यों के बीच सामाजिक प्रतिष्ठा में भेदभाव करता है। उसी तरह परिवार के अंदर और बाहर लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष की स्थिति में अंतर पाया जाता है। अर्थात समाज में कुछ लोग जैविक गुणों के आधार पर बड़े और छोटे होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि मात्र जैविक गुणों के आधार पर ही स्तरण या स्थिति का निर्धारण नहीं होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैविक गुणों के साथ कोई सामाजिक मूल्य या सांस्कृतिक गुण जुड़ा हुआ है या नहीं। यहाँ जैविक और सामाजिक दोनों तत्व आपस में एक साथ मिलकर हैसियत का निर्धारण करते हैं। तीसरा, अर्जित उपलब्धियां। जिस समाज के अंतर्गत व्यक्तियों को आगे बढ़ने की पूरी आजादी होती है वहां अर्जित उपलब्धियों के आधार पर सामाजिक हैसियत का निर्धारण कुछ विशेष रूप से होता है। उपलब्धियां भौतिक और अभौतिक दोनों ही हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कवि, लेखक, कलाकार या खिलाड़ी होने में सफल हो जाता है तो उसकी वह अभौतिक उपलब्धि मानी जाती है। पर यदि किसी को अपार संपत्ति या कोई उच्च राजनीतिक पद प्राप्त हो जाता है तो उसकी वह भौतिक उपलब्धि मानी जाती है। भौतिक उपलब्धि साधारणतया अस्थायी होती है। इन उपलब्धियों के आधार पर समाज व्यक्तियों को क्रमबद्ध करता रहता है। चौथा, स्वामित्व। व्यक्तियों को समाज में दो प्रकार का स्वामित्व प्राप्त होता है। एक तो वह जो आसानी से हस्तांतरित हो सकता है, जैसे भौतिक वस्तुएं, जमीन, गाड़ी, मकान, वस्त्र, आभूषण इत्यादि। दूसरी वे जो आसानी से हस्तांतरित नहीं होती हैं, जैसे योग्यता या किसी खास प्रकार के व्यक्तिगत गुण, जैसे संगीत विद्या में महारत, एक अच्छा शल्य चिकित्सक चिकित्सक होना या मूर्तिकार होना इत्यादि। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उपरोक्त अर्जित उपलब्धियां एवं स्वामित्व लगभग एक ही प्रकार के कारक हैं। पार्सन्स यह स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि किन कारणों से उन्होंने इन दोनों को अलग अलग कारक के रूप में देखा है। जो फर्क दिखाई पड़ रहा है वह बहुत बारीक है और इसकी कोई विशेष समाजशास्त्रीय महत्ता नहीं है। पांचवा, सत्ता। इसके अंतर्गत पार्सन्स ने ऐसे अधिकारों की चर्चा की है जो संस्थागत हैं। यह दो प्रकार का हो सकता है। एक तो वह जो किसी व्यक्ति को समाज के परंपरागत मूल्यों के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे पिता का पुत्र पर अधिकार, किसी धर्मगुरु का उसके अनुयायियों पर अधिकार इत्यादि। सत्ता का दूसरा पक्ष वह है जो किसी व्यक्ति को किसी दफ्तर में पद से प्राप्त होता है, जैसे जिलाधीश या मंत्री को जो सत्ता प्राप्त होती है वह उसके पद से मिलती है। सत्ता के ऐसे विभाजन से भी व्यक्तियों की सामाजिक हैसियत या समाज में स्तरण का निर्धारण होता है। छठा, शक्ति। पार्सन्स ने इसके अंतर्गत उन सभी प्रकार के अधिकारों या सत्ता की चर्चा की है जिसका वर्णन ऊपर नहीं किया गया है, इसीलिए इसे उन्होंने शक्ति का अवशिष्ट श्रेणी यानी रेसिडुअल कैटेगरी ऑफ पावर कहा है। इस प्रकार की शक्ति को सामाजिक वैधता प्राप्त नहीं होती है या इसे संस्थागत अधिकार नहीं कहा जा सकता है। समाज में कुछ लोग गैर विधानिक तरीकों से भी समाज में कुछ लोग गैर वैधानिक तरीकों के बल पर बहुत सारे काम करने में सक्षम हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई पद या समाज से मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन अपने बलबूते पर कुछ लोगों को प्रभावित कर कठिन से कठिन काम कराने या करने में वे सफल हो जाते हैं। जैसे आजकल बहुत चोर उचक्के या डकैत कठिन से कठिन चुनाव जीतने या जिताने में सफल हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के माफिया गिरोहों, तस्करी से जुड़े लोगों एवं अन्य अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जो अधिकार व शक्ति प्राप्त है वह इसी श्रेणी की शक्ति है। समाज में वैसे लोगों की हैसियत कुछ कम नहीं होती है। प्रेम से न सही, डर से ही सही, वैसे लोग समाज के उच्च श्रेणी में रखे जाते हैं। अब हम सामाजिक स्तरण के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्तरण के संबंध में जो भी विचार हमारे सामने आए हैं उसे देखने से ऐसा लगता है कि समाज वैज्ञानिक मुख्य रूप से तीन प्रकार की विचारधारा में विश्वास करते हैं। पहला, प्रकार्यवादी विचारधारा यानी फंक्शनल थ्योरी। दूसरा, संघर्षवादी विचारधारा यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। और तीसरा, संकलनवादी विचारधारा यानी इलेक्टिक थ्योरी। मैक्स वेबर, पॉलिन रॉयट एवं फ्रैंक पार्किन के तीसरे प्रकार की विचारधारा के अंदर रखा जा सकता है। अब हम बारी बारी से इन तीनों विचारों की चर्चा करेंगे। पहला, प्रकार्यवादी विचारधारा, डेविस एवं मूर का विचार। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक किंग्सली डेविस एवं विल्बर्ट मूर थे। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि सामाजिक स्तरण समाज की जरूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों की जरूरतों की। सामाजिक स्तरण की यह विचारधारा तीन मान्यताओं पर आधारित है। पहला, विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां स्तरण नहीं है। विभिन्न मानवशास्त्रियों के अध्ययनों से यह स्पष्ट पता चलता है कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी तरह का स्तरण अवश्य पाया जाता है। दूसरा, प्रत्येक समाज में लगभग समान प्रकार से विभिन्न स्तरों के बीच प्रतिष्ठा का बंटवारा है। जैसे जैसे सामाजिक स्थिति या श्रेणी में गिरावट होती है वैसे वैसे प्रतिष्ठा में भी गिरावट होती है। किसी भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करता है। जो लोग समाज के सबसे ऊंचे पद पर आसीन हैं उन्हें समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा राज्यपाल को समान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। तीसरा, इस सिद्धांत की तीसरी मान्यता यह है कि विभिन्न समाजों के बीच सामाजिक स्तरण के स्वरूप में भिन्नताएं हैं। उदाहरण स्वरूप, सरल समाजों यानी सिंपल सोसाइटीज में स्तरण का आधार आमतौर पर उम्र एवं लिंग, एज एंड सेक्स हुआ करता है, जबकि जटिल समाजों के अंतर्गत स्तरण का आधार भी काफी जटिल हुआ करता है, जैसे शिक्षा, व्यक्तिक गुण, राजनीतिक हैसियत, संपत्ति इत्यादि। यहाँ डेविस एवं मोर के सिद्धांत में स्तरण के बीच दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने की हैं। पहली तो यह है कि स्तरण एक विश्वव्यापी सामाजिक यथार्थ है, और दूसरी यह है कि स्तरण के आधार सभी समाजों के लिए समान नहीं हैं। अपने सिद्धांत के समर्थन में डेविस एवं मोर ने निम्नलिखित विचार पेश किए हैं जो काफ़ी तर्कसंगत लगता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह एक दोषमुक्त विचारधारा है। डेविस एवं मोर ने यह तर्क दिया है कि किसी भी समाज में सभी व्यक्ति समान स्तर के नहीं हो सकते हैं। समानता को भी अपनी एक सीमा होती है। समान स्तर के लोगों से समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। सामाजिक असमानता समाज के लिए नितांत आवश्यक है, इसीलिए कि प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए समान रूप से पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है। हर एक कार्य के लिए अलग अलग पुरस्कार और प्रोत्साहन होता है। जिस कार्य की समाज में सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उस कार्य के लिए समाज ज़्यादा पुरस्कार देता है। जैसे इंजीनियर और मजदूर को बराबर मजदूरी नहीं दी जा सकती है। उसी तरह टैक्सी चालक और हवाई जहाज के पायलट को बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता है। हर किसी को यदि समाज में सभी कार्यों के लिए समान मजदूरी या इनाम मिले, तो कोई भी व्यक्ति कठिन या जोखिम भरे कार्य को नहीं करना चाहेगा। सभी लोग आसान काम करके ही जीवन यापन करना पसंद करेंगे। अस्तरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है। पहला, समाज में कुछ पद तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उसके लिए व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है। दूसरा, समाज में प्रत्येक व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह सभी कार्यों को ठीक से कर सके। तीसरा, समाज में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अध्ययन या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर उच्च पदों पर कार्य कर सकते हैं। चौथा, समाज के मेधावी लोग ऐसे काम को तभी करेंगे जब उन्हें कुछ विशेष पारितोषिक दिया जाए, जैसे उच्च तनख्वाह। पांचवा, प्रत्येक समाज में असमान पारितोषिक व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है, तभी विभिन्न पदों को ठीक ढंग से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। डेविस एवं मूर का यह दृष्टिकोण कि समाज के लिए कुछ पद अधिक महत्वपूर्ण हैं तो कुछ कम, यह एक विवादपूर्ण तर्क है। यह तय करना काफी कठिन काम है कि कौन सा काम सबसे अधिक और कौन सा काम सबसे कम महत्वपूर्ण है। किसी काम की महत्ता के पीछे व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी का भाव छिपा हुआ है। यह तय करना बहुत ही कठिन काम है कि कूड़ा उठाने वालों का काम स्कूल शिक्षक की तुलना में कम महत्व का है, अतः उसे शिक्षक की तुलना में कम मजदूरी मिलना चाहिए। उसी तरह से यह तय करना बहुत कठिन है कि एक रसोइये का काम सिपाही की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। प्रकार्यवादी सिद्धांत में इस दोष की ओर सबसे पहले हमारा ध्यान मेलविल एम टूमिल ने 1967 में आकृष्ट किया था। उन्होंने यह भी कहा है कि समाज में किसी व्यक्ति की योग्यता और कुशलता को मापने के लिए केवल वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। डेविस एवं मोर का यह विचार भी सही नहीं लगता है कि स्तरण से समाज में व्यवस्था या एकता कायम होती है। सत्य तो यह है कि अस्तरण के कारण स्वार्थों की टकराहट होती है, जिसके कारण समाज में वर्ग संघर्ष या जातीय संघर्ष चलता रहता है। दलित पिछड़ा वर्ग आंदोलन एवं कृषक आंदोलन भारतीय संदर्भ में इसका एक अच्छा उदाहरण है। बेंडिक्स एवं लिपसेट ने अपनी पुस्तक क्लास स्टेटस एंड पावर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन कंपरेटिव प्रस्पेक्टिव में अस्तरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की है। आलोचकों का कहना है कि अस्तरण का यह सिद्धांत वृत्ताकार तर्क यानी सर्कुलर लॉजिक पर आधारित है, जैसे उच्च वेतन समाज के लिए प्रकार्यात्मक या आवश्यक है क्योंकि कुछ लोगों को उच्च वेतन प्राप्त है। प्रकार्यवादियों ने संघर्ष एवं शक्ति से जुड़े तथ्यों को अपने सिद्धांत में कोई खास महत्व नहीं दिया है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जोर जबरदस्ती के आधार पर भी समाज में कुछ लोगों को नीचे रखा जाता है, जैसे गोरी दुनिया में काले लोगों को और भारत में पिछड़ों तथा दलितों को अस्तरण में संपत्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन तथ्यों को इस सिद्धांत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि इसमें नज़रअंदाज किया गया है। प्रकार्यवादियों ने अस्तरण के अर्जित आधारों को कुछ ज़्यादा ही उजागर किया है। इस तर्क को आज कोई भी व्यक्ति पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उच्च पदों पर आसीन सभी व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर ही हैं। बहुत लोग समाज में उच्च श्रेणी, वंश परंपरा या विभिन्न प्रकार के संकीर्ण प्रभावों के माध्यम से भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा राजतंत्र पर आधारित व्यवस्था एवं भारत जैसे विकासशील देशों में अक्सर देखने को मिलता है। प्रकार्यवादी सिद्धांत सामाजिक स्थिरता का समर्थक है। दूसरे शब्दों में इसे परिवर्तन विरोधी भी कहा जा सकता है। यह समाज के वर्तमान व्यवस्था की सैद्धांतिक रूप से पुष्टि करता है। भारतीय संदर्भ में तो यह विचारधारा बिल्कुल अनुपयोगी एवं अनुचित है। इस तरह के विचारधारा से जातिगत समाज को समर्थन मिलता है। अब हम दूसरी विचारधारा, संघर्ष संबंधी विचारधारा, इस पर विचार करेंगे। संघर्ष संबंधी विचारधारा को मार्क्स का विचारधारा भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष की विचारधारा के आधार पर सामाजिक अस्तरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है, आज तक अस्तित्व में रहे समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, अर्थात प्रत्येक काल में वर्ग रहे हैं और उनके बीच निरंतर संघर्ष रहा है। स्वतंत्र लोग व दास, कुलीन व अकुलीन, सामंत और अर्धदास, अत्याचारी व पीड़ित, ये सभी वर्ग विभिन्न कालों में रहे हैं। मार्क्स के वर्ग का विचार समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता पर आधारित है। इसे समझने के लिए मार्क्स के द्वारा दिए गए उत्पादन के साधनों मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणा को समझना होगा। औद्योगिक युग के पूर्व खेती एवं उससे जुड़े उपकरण उत्पादन के मुख्य साधन माने जाते थे। उस काल के समाज में मार्क्स के अनुसार दो वर्ग थे। पहला भूस्वामी वर्ग यानी अभिजात वर्ग यानी एरिस्टोक्रेट्स तथा भद्रलोक यानी जेंट्री या दास स्वामी स्लेव होल्डर्स और दूसरा उत्पादक वर्ग जिसमें कृषि दास यानी सर्व्स, दास यानी स्लेव्स एवं स्वतंत्र कृषक यानी फी सीजन पिसेंट्री इत्यादि आते थे। सामंतवादी युग में यही दो वर्ग पाए जाते थे और इन्हीं दोनों के बीच स्वार्थों की टकराहट के कारण संघर्ष होता था। औद्योगिक युग में दो नए वर्गों का विकास हुआ। पहला उद्योगपति या पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट एवं मजदूर वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग यानी वर्किंग क्लास। इस विभाजन का भी आधार उत्पादन का साधन ही है। चूंकि वर्ग का विभाजन शोषण पर आधारित होता है, इसीलिए इस व्यवस्था में भी स्वार्थों की टकराहट के कारण दो वर्गों के बीच अक्सर संघर्ष होता रहता है। मार्क्स ने यह तीसरे वर्ग की भी चर्चा की है, जिसे उन्होंने संक्रमणशील यानी ट्रांजिशनल क्लास कहा है। समाज जब एक ऐतिहासिक काल से दूसरे काल में प्रवेश करता है, तब पिछले काल का कुछ अवशेष नए काल में पूर्ववत रह जाता है, पर ऐसे लंबे समय के लिए नहीं होता है। जैसे फ्रांस और स्पेन में जब समाज सामंती व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था में प्रवेश किया, तब औद्योगिक काल में भी कुछ लोग सामंती व्यवस्था की तरह जागीरदारी प्रथा से जीवन यापन करते रहे। यह स्वाभाविक है क्योंकि समाज एक चरण से दूसरे चरण में जाने पर मौलिक रूप से नहीं बदलता है। मार्क्स ने लोगों का ध्यान वर्ग विशेष के अंतर्गत पाए जाने वाले वर्ग संघर्ष की ओर भी आकृष्ट किया है। एक ही वर्ग के अंतर्गत दो विरोधी किस्म के स्वार्थ समूह पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप उच्च वर्ग के अंतर्गत वित्तीय पूंजीपति यानी फाइनेंशियल कैपिटलिस्ट तथा बैंकर्स एवं औद्योगिक उत्पादक यानी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स के बीच संघर्ष पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार छोटे और बड़े उद्योग धंधों के लोग उनके बीच स्वार्थों की टकराहट होती है। मजदूर वर्ग के अंतर्गत भी अस्थायी मजदूरों एवं दैनिक मजदूरों या बेरोजगार लोगों के बीच संघर्ष देखने को अक्सर मिल जाता है। वर्ग संघर्ष के इस विचार का विरोध करते हुए डॉरेन डॉफ ने कहा है कि वर्ग संघर्ष कभी भी पूरे समाज के स्तर पर नहीं होता है, बल्कि समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले छोटे छोटे समूहों के बीच होता है। दूसरे शब्दों में तनाव और संघर्ष पूरे समाज की संरचना पर नहीं होता, बल्कि संरचना के भीतर पाए जाने वाले कुछ समूह के स्तर पर होता है। कार्ल मार्क्स ने केवल आर्थिक कारण को ही सामाजिक स्तरण का आधार माना है, जबकि समाज में धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, प्रजाति, पेशा एवं व्यक्तिगत गुणों के आधार पर भी स्तरण पाया जाता है। जैसा कि मैक्स वेबर एवं अन्य समाजशास्त्रियों ने भी दलील दी है, मार्क्स की विचारधारा काफी संकुचित है, क्योंकि मात्र वर्ग संघर्ष के आधार पर ही सामाजिक स्तरण को नहीं समझा जा सकता है। मार्क्स के विचारों के आधार पर विश्व में पाए जाने वाले सभी सामाजिक स्तरण के प्रकारों को कदापि नहीं समझा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, भारत में ही एक लंबे समय तक, विशेषकर प्राचीन एवं मध्यकालीन युग में, सामाजिक स्तरण का मुख्य आधार जाति था। वर्तमान भारत में भी बहुत कुछ इसका रूप देखने को मिलता है। उनकी यह भी दलील सही नहीं है कि प्रत्येक वैसा समाज जो वर्ग व्यवस्था पर आधारित है अपनी असमानताओं के कारण संघर्ष की दहलीज पर खड़ा है। मार्क्स ने जिस वर्ग विहीन समाज की कल्पना की है उससे यही स्पष्ट होता है कि वे स्तरण के विरोधी थे, क्योंकि स्तरण के पीछे असमानता और समानता का आधार शोषण है, इसीलिए उन्होंने स्तरण मुक्त समाज की कल्पना की है। पर अब तक के अनुभवों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि उनका यह विचार काफी काल्पनिक है। स्तरण एक सामाजिक यथार्थ है, अतः स्तरण मुक्त समाज यथार्थ विरोधी है। प्रकार्यवादी एवं संघर्षवादी विचारधारा के बीच स्तरण के संदर्भ में क्या फर्क है, यह बहुत ही सहजता से आर्थर स्टिंकम की सारणी से समझा जा सकता है। यहाँ हम उन दोनों विचारधाराओं के बीच के फर्क को इस सारणी से स्पष्ट करेंगे। टू व्यूज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक साइड में द फंक्शनल व्यूज और दूसरी साइड में द कॉन्फ्लिक्ट व्यूज। पहला, स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल, नेसेसरी एंड इनिविटेबल। कॉन्फ्लिक्ट व्यू में स्ट्रेटिफिकेशन मे बी यूनिवर्सल विदाउट बीइंग नेसेसरी और इनिविटेबल। फंक्शनल व्यू में सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी द सोशल सिस्टम शेप्स द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, जबकि द कॉन्फ्लिक्ट व्यू में द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स शेप सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी द सोशल सिस्टम। तीसरा, द फंक्शनलिस्ट व्यू में स्ट्रेटिफिकेशन arises from the societal need for integration, coordination and cohesion. Conflict view में stratification arises from group conquest, competition and conflict. चौथा, stratification facilitates the optimal functioning of society and the individual. Conflict view में stratification impedes the optimal functioning of society and the individual. पांचवा, functional view में stratification is an expression of commonly shared social values. कॉन्फ्लिक्ट व्यू में स्ट्रेटिफिकेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ पावरफुल ग्रुप्स। छठा, फंक्शनल व्यू में पावर इज यूजली लेजिस्लेमेटली डिस्टर्ब्ड इन सोसाइटी, जबकि कॉन्फ्लिक्ट व्यू में पावर इज यूजली इलीजिलेमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी। सातवां, फंक्शनलिस्ट व्यू में टास्क एंड रिवॉर्ड्स आर इक्विटेबली एलोकेटेड। कॉन्फ्लिक्ट व्यू में टास्क एंड रिवॉर्ड आर इनइक्विटेबली एलोकेटेड। आठवां, द इकोनॉमिक डायमेंशन इज सबऑर्डिनेट टू अदर डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट व्यू में द इकोनॉमिक डायमेंशन इज परमानेंट इन सोसाइटी। फंक्शनलिस्ट व्यू में नौवा, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम जनरली चेंज थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। जबकि कॉन्फ्लिक्ट व्यू में स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम ऑफन चेंज थ्रू रिवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। ये दोनों व्यू प्रकारवादी एवं संघर्षवादी विचारधाराओं के बीच अस्तरण के संदर्भ में पाए जाने वाले फर्क थे। प्रकारवादी एवं संघर्षवादी विचारधाराओं के बीच अस्तरण को लेकर बहुत कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन इनके संबंधों में अस्तरण को लेकर बहुत कुछ फर्क भी है। यहाँ ऊपर में इन दोनों फर्कों को दिया जा चुका है।